Sí, me la
Mano,
pasé.
bebé.
या आपको कोई प्रश्न पूछना है तो हम उन प्रश्नों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। एक तो संसार की परिभाषा है और एक बाबा की परिभाषा है। बाबा ने कई सारी नोटियों में अलग और अलबेला इस समानार्थी के रूप में प्रयोग किया है, परंतु अगर शब्दों की गहराई में जाए शब्दार्थ एक है कि भावार्थ, भाव दोनों का एक ही है। पाठ की एक किताब है अलग और अलबेलापन, जिसमें बाबा के सभी महावाक्यों का संकलन है। एक है लेविन, इंग्लिश में अगर उसका अनुवाद करे अलग से, एक है अलबेलापन। अलबेलापन को कहते हैं केयरलेसनेस। आलस जो है वो थोड़ा स्थूल, आलस का संबंध देह से अधिक है, अल्बेलेसन का संबंध मन से। जैसे हमने कहा पर बाबा ने ये दोनों शब्दों का प्रयोग कई सारे मूल्यों में समानार्थी के रूप में प्रयोग किया है, जैसे दोनों एक ही है। एक तीसरा शब्द मूल्यों में आता है कपसत। गफलत का संबंध आलस से कम और अलबेले कम से ज्यादा है। तो एक है आलस, जिसको हम एक तरफ है नींद निद्रा और शरीर थका हुआ है कहो या थकान है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, आलस उत्पन्न हो रहा है कि हम नहीं चाहते कि कुछ करें, जैसे जान पे आ रहा है कि नहीं करना है, वो एक देह से उसका संबंध जाता है। बाकी अलबेलापन जो है वो मन से संबंधित है, मन में धारणा है, मन में पता सब कुछ है कि ये सारी चीजें करनी है, परंतु मन कहीं ना कहीं उसे नहीं करना चाहता है। तो वो जो मन की वृत्ति है ज्ञान सारा है, परंतु किसी ना किसी कारणवश हम नहीं करना चाहते या उस धारणा के वशीभूत हो गए हैं, परवश हो गए हैं, उस वजह से वो नहीं करना चाहते। तो वो जो किताब कह रहे थे संकलन, उसमें बाबा ने बहुत विस्तार से जब आज तक जो जो आलस के बारे में कहा है या अलबेलापन के बारे में कहा है उसका वर्णन किया है। यदि शब्दों का अर्थ काफी आपका प्रश्न है तो अर्थ ये है। और बाबा ने चार शब्दों का प्रयोग किया था मुझे में, एक मन का मौन, मन शांत, मन की दान और मन शक्तिशाली। होमवर्क दिया था एक हफ्ते के लिए मन को शांत, मन शांत, और एक मास के लिए कहा था कि मन को शक्तिशाली बनाओ, जो भी अभी पूरा हो रहा है दो दिन के बाद एक मास। फिर से वही है, एक है शब्दार्थ एक है भावार्थ। अगर उसकी गहराई में देखे तो ये चारों ही चीजें एक ही चीज। जब मन शांत होता है उस मन, और दूसरे दो शब्द हैं, एक है शांति एक है साइलेंस। बाबा प्रयोग करते हैं साइलेंस की शक्ति, परंतु बाबा जब साइलेंस की शक्ति कहते हैं उसका अर्थ मौन नहीं होता है, क्योंकि साइलेंस का अर्थ होता है मौन। हिंदी में साइलेंस का रूपांतरण अनुवाद है मौन, परंतु बाबा जब साइलेंस की शक्ति कहते हैं उसका अनुवाद बाबा ने खुद मूल्यों में किया है शांति की शक्ति। शांति को उसकी शक्ति को बाबा पावर ऑफ पीस नहीं कहते, उसका रूपांतरण क्या कहते हैं, अनुवाद क्या करते हैं बाबा, साइलेंस पावर या शांति की शक्ति। बहुत सारे अध्यक्ष मूल्य है कि जिसमें बाबा ने साइलेंस की पावर को डिफाइन किया है, और साइलेंस शक्ति को पावर ने सीधा जोड़ा है योग, योग बल अर्थात साइलेंस पावर अर्थात ही शांति की शक्ति। उसका संबंध शांति जो हम पीस जिसको समझते उससे कम है। तो इस मुरली में बाबा ने कहा था मन का मौन, यदि मन का मौन है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। फिर कहा था मन शांत, एक है मुख की शांति, एक है मन की शांति, तीसरा कहा था मन की शांति। जो मन शांत है और जो मन मौन है, मौन अर्थात यहां पर संबंध एक तो मुख का है कि जो मुख जिसमें चुप है, और दूसरा है मन का, मन का मौन अर्थात स्वचिंतन, मन का मौन अर्थात स्वचिंतन, मन का मौन अर्थात समर्थ संकल्प शक्तिशाली संकल्प, मन का मौन अर्थात व्यर्थ से मौन, निगेटिव से मौन, विकारों से मौन। विकार तो बहुत दूर की बात छूट गया है, परंतु व्यर्थ और निगेटिव। तो जब मन की वह अवस्था जिसमें बहुत श्रेष्ठ संकल्प मन में चल रहे, जैसे एक बार दादी जानकी कहीं कार से जा रही थी तो उनके बाजू में एक बहन बैठी थी। दादी ने उससे पूछा आप क्या पूछताछ करती हो, तो उस बहन ने कहा कि मैं तीन बिंदी लगाने का पूछताछ करती हूँ, एक आत्मा, एक बाप को याद करना और दूसरा जो हुआ है ड्रामा में उसको बिंदी। तो दादी ने कहा था कैसे आप बेबी पूछताछ करती हो, तो ये बेबी पूछताछ था, ये भी कोई पूछताछ है बिंदी लगाना। तो उसने पूछा कि दादी आपके पास तो दिन भर में कितनी बहनें आती और कितनी समस्याएं आती रहती है, आपको सबको सुनना पड़ता है, तो आपको बिंदी नहीं लगानी पड़ती है। दादी ने कहा था मेरा व्यर्थ चलता ही नहीं है, मेरा साइज समर्थ चलता है, तो मैं क्यों बिंदी लगाऊ, वो बिंदी आप लोग लगाओ, जो आज भी कहा बाबा ने मुझे। तो मन का मौन, मन की वह दशा है, चित्त की वह दशा है कि जिसमें व्यर्थ से लगाना है, चित्त की वह दशा जिसमें नकारात्मक भाव से लगाना है, ऐसा मन स्वतः ही शांत है, स्वतः ही मौन है। यहां उसको बहुत कुछ चीजों के बारे में संकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं। हमारे दो मन है, बाह्य मन कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। जब बाह्य मन शांत होता है तो जो चीजें डाली जाती है सीधा अवचेतन मन में जाती है। तो बाह्य मन एकदम से शांत हुआ है और धीरे धीरे जो अवचेतन मन है वो भी फिर शांत हो जाता है। ऐसी मन की दशा अर्थात मौन, ऐसी मन की दशा अर्थात मन शांत। और जो मन शांत है और जो मन मौन है वो स्वतः ही जो कुछ हो रहा है वो नृत्य है, वो डांस है, मौन शांत और डांस। और जो मन ये तीनों ही चीजें कर रहा है, ये दो तीनों ही चीजें जहां स्वतः ही हो रही है वो मन शक्तिशाली है। बाबा ने एकमात्र होमवर्क दिया है माइंड को शक्तिशाली बनाओ, एक हफ्ता होमवर्क दिया था मन को शांत रखो। ये एक मास या एक हफ्ते की बात नहीं है, जीवन भर का पुरुषार्थ है। तो मुख से बोलना, कहना, बात करना ये तो बहुत छोटी छोटी बात है जो मुख के तल पर है, परंतु हाँ मन के मौन के लिए मुख का मौन भी जरूरी है। मौन, अंतर्मुखता और एकांत, ये तीन ऐसी चीजें हैं, बिना इन तीन चीजों के अध्यात्म के इस जीवन में उन्नति नहीं हो सकती। मौन, एकांत और तीसरा अंतर्मुखता। अध्यात्म एक ऐसा विषय है कि जिसमें बहुत गहन स्वचिंतन की आवश्यकता है, बहुत गहन ज्ञान की, ज्ञान के चिंतन की आवश्यकता है। ऊपर 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 से समझ लेना, ऊपर ऊपर से ऊपर में हम थोड़ा पढ़ ले, बोलिए थोड़ा रिवाइज कर ले, इससे नहीं होगा। क्योंकि एक एक लाइन जो बाबा ने कही है इतनी फिलोसॉफिकल है, इतना बड़ा सिद्धांत है वो, कि एक ही लाइन लेकर उस पर स्थित किया जा सकता है, इतनी बड़ी किताब लिखी जा सकती है, इतने दृष्टिकोण से वो एक ही लाइन को देखा जा सकता है। और जो कह रहा है बाबा, उसने ऐसा नहीं कि ये विषय पहली बार कह रहा है, अब तक इतने सालों में अलग अलग बार एक ही विषय को अलग अलग तरीके से, मतलब एक ही सब्जेक्ट को भारतीय तो हम बात ही नहीं कर रहे, संसार वालों ने क्या कहा, भगवान ने ही एक ही विषय को इतने अलग अलग ढंग से कहा। एक ही अगर संतुष्टता की मुरली देखो तो हजार यहां वहां बिखरे और हर बार नई नई बातें कही, परंतु हम केवल एक मुरली पढ़ते हैं तो हमारे केवल उतना ही हमारे ध्यान में रहता है और खाली उस दिन के, परंतु यदि हम सारी ही मुरलियां अध्ययन करें तो पता चलेगा एक का कनेक्शन दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से है, वो जो लिंक है किस तरह बाबा ने जोड़ी और उसमें फिर और चीजें पता चलेगी, कहीं कहीं विरोधाभास भी दिखेगा ऊपर कि ये बात है कि कहीं उसी के विरोध में दूसरे मूल्य में अलग नहीं, परंतु और गहराई में जाने के, ये तो थोड़ी आगे की स्टेज है कि पहले तो हम केवल एक ही मूल्य पढ़ रहे हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो एक मूल्य को दूसरी मूल्य से कनेक्ट कर रहे हैं, तीसरा हमको फिर विरा व्यवहार दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ कहा इसमें कुछ कहा, इसमें तो कह रहा है ऐसे करो, इसमें कह रहा है ऐसे करो, परंतु हमने देखा कि और गहराई से अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि सब में कहीं ना कहीं कनेक्टिंग है, कहीं ना कहीं एक बिंदु है जो जोड़ता है सब, शब्दों में विरोधाभास है परंतु वो जो स्वयं है उसमें कोई विरोधाभास नहीं, वो जो सागर है उसमें कोई उनकी लहरें हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। मधुबन में हमारा एक ग्रुप है, उसमें एक भाई कहता है मधुबन में एक मंदिर है माउंट में लहरी बाबा, तो हमारा बाबा भी क्या है लहरी, कभी कैसी लहर चलती है कभी कैसी, किसी ने सोचा नहीं होगा इस बार बाबा होगी ओम शांति पर चलाए, शब्द ही कहा ओम शांति शब्द कितने प्यारे हैं, ओम शांति शब्द कहते ही अंदर शांति फैल जाती है, जैसे बाबा शब्द अर्थ सहित फैलता है वैसे ओम शांति शब्द अर्थ सहित फैलता है, कैसा भी वायुमंडल हो, रोने का वायुमंडल हो, जैसे ही ओम शांति कहते हो ओम शांति शांति की याद दिलाते, व्यक्त महावाक्य है यदि बाबा ने सुना कैसी उसकी लहर चलेगी, क्या वो करेगा कैसा वो कहेगा। आप अगर अभी की जो मुरलियां है उसका कंपेरिजन करो पुराने मुरलियों के साथ 69 से लेकर 70 तक, 70 से लेकर 80 तक, 80 से लेकर 90 तक, 90 से लेकर 2000 तक, कितनी गहन तत्व फिलॉसफी है, एक एक चीज को उदाहरण से बाबा समझा रहे, जैसे वो एक ही मुरली में कम से कम 10 उदाहरण, कोई भी एक अवस्थवानी उठा लो 10 उदाहरणों के साथ अपनी बात को बाबा ने समझाया, जैसे जैसे वैसे ही, जैसे वो वैसे ही, जैसे वो वैसे ही, हर बात को उदाहरण, और अभी जो मुरलियां चल रही है उसमें कोई उदाहरण नहीं, अभी मुरलियां चल रही है बाबा ने कहा है 26 जुलाई 1969 की एक मुरली, 26 जून 1969 जिसमें बाबा कह रहे हैं अब बाबा, अब तक जो सिखाना था बाबा ने सिखा दिया है, अब बाप आते हैं केवल मिलने, पढ़ाने नहीं, पढ़ाई अब पूरी हुई, कब की बात कह रहे हैं 26 जून 1969 अवजक्तवाणी, अब पढ़ाई पूरी हुई, अब बाप आते हैं मिलने के लिए, पढ़ाई तभी पूरी हो चुकी, ये तो केवल मिलन है अभी, और अभी अगर लोग, अभी तो केवल मिलन है, कौन है पावर जिस तरह से मुझे चलाते हैं, बाप के दिल में बाप, बच्चों के दिल में बाप, बाप के दिल में बच्चे, एक हाथ उठाओ दो हाथ उठाओ कान दिलाओ, ऐसी मुरलियां चलती है, अभी क्या सिखाएगा वो, सारा फिलॉसफी उसने दे चुका है, अब समेट रहा है, अब जाने का समय है उसका, अभी कुछ देने को बाकी नहीं है। बाइबल में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, जब जीसस क्राइस्ट को सूली चढ़ाई जाती है उसके 12 घंटे पहले, उसके 12 घंटे पहले वो एक वाक्य कहता है अपने शिष्यों से कि आज तक तुम्हें मैंने उदाहरणों के द्वारा दिखाया, कहानियों के द्वारा दिखाया, परंतु जब मैं तुम्हें डायरेक्ट मैं तुमसे बात करने लगूंगा, कोई उदाहरण नहीं दूंगा, कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, समझ लेना मेरे जाने का समय आ गया है। जो 8-8 पेज की जो मूवियां चलती थी पहले 60s और 70s और 80s की, अभी वैसी नहीं। अभी जो मूवियां है वो मूवियां हैं, खाली मिलन है, मनोरंजन है, बाबा जस मिलने आते। वो जो फिलोसफी थी, तत्व ज्ञान, वो तो वहां है पुराना। एक एक चीज ऐसी शायद ही कोई बात है, कोई टॉपिक है जिसके बारे में बाबा ने उत्तर नहीं दिया, खाली हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। और ऑब्जेक्ट तो वाणी अब बहुत गहरी है। साकार मूलिया सिंपल सिंपल है, बाप आए हैं पति से पावन बन में, तुम्हें अभी स्वर्ग चलना है, ये दुनिया का विनाश होने वाला है, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, दिव्य गुण धारण करना है, छोटे छोटे उल्टे उल्टे वाक्य हैं। परंतु ऑब्जेक्ट तो वाणी कहाँ से वाक्य चालू होता है और कहाँ एंड होता है, ना कॉमा ना फुल स्टॉप ना कुछ नहीं, इतना बड़ा बड़ा एक एक वाक्य। तो मन मौन, मन शांत, मन के दान, ऐसा जहां हुआ वो मन स्वतः ही शक्तिशाली। और कोई प्रश्न? कोई भी प्रश्न ज्ञान से संबंधित, जीवन से संबंधित, ताकि हम उसकी चर्चा करें। उसके उनको हम खाली इतना ही बता सकते हैं, बाबा ने जो कहा कि ओम शांति, जैसे ये शब्द उच्चारण करते हो इसके अर्थ स्वरूप में टिक हो जाओ, फिर टिक जाओ, एक जगह बाबा ने ऐसे कहा। तो उनको खाली हम छोटे छोटे अभ्यास दे सकते हैं, जब भी आप ओम शांति कहो तो क्या अभ्यास करना है, जब आप दूसरों को ओम शांति कहो तो कैसे हो तो क्या अभ्यास करना है। उनको छोटे छोटे सामान दे सकते हैं कि घर में भोजन पर आते समय, यहाँ आते समय, चलते समय क्या क्या हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो मुख्य चीज है, वो है हमारा मुख शांत हो। यदि हम मुख से कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, जरूरी नहीं हर बार ज्ञान की बातें बोल रहे, इतना व्यर्थ बोल रहे हैं, इतना व्यर्थ बोल रहे हैं, तब मन शांत कैसे हो सकता है। जो मुख्य शांत नहीं हुआ है, बाबा तो बहुत ऊंची बातें कर रहा है। मन शांत अर्थात ये तो एकदम समाधि या योगी की अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत बड़ा अध्यात्म है। उसके पहले हम कहते हैं कि बाबा ने चुप रहने को तो कहा ही नहीं, परंतु बीच बीच में, अंतराल में, इंटरवल में मुख को रेस्ट देना, उसको मौन कर देना, मुख को, स्थूल मुख बहुत जरूरी है। दादी प्रकाश मुनि ने कभी मधुबन में मौन घटिया कराई थी, मौन घटिया, और मधुबन निवासी अनुभव सुनाते हैं कि उन 3 दिनों में कभी इतनी जैसे शक्ति अंदर आ गई, मौन में बहुत बल है। हम मन के मौन की बात नहीं कर रहे, मुख के मन की मौन की बात कर रहे। यदि हम ये कहें कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमें बहुत बोलना पड़ता है, हमारा तो बहुत सारा विस्तार है, परंतु कम से कम सुबह का समय तो हम मौन रख सकते, कम से कम 8 बजे तक हम मौन अर्थात स्वचिंतन, केवल ज्ञान का चिंतन या ज्ञान के शब्द, ये मौन का उल्लंघन नहीं करते। अभी भी हम कहें तो हम मौन में बोल रहे हैं, परंतु ये भी एक मौन है क्योंकि ज्ञान के शब्दों का उच्चारण हो रहा है। तो कम से कम 8 बजे तक मौन, और जब कोई है नहीं, कोई सेवा नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं, तब तो हम शांत बैठ सकते, वो भी मौन के इसमें इंक्लूड होगा, वो जमा होगा मौन में, थोड़ा 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 मौन चुराना है, थोड़ा थोड़ा मुख को रेस्ट देना है। तो माताएं और घर गृहस्थी में जो रहते हैं उनको इतनी ज्यादा बोलने की आदत होती है नॉन स्टॉप, सबसे पहले तो वाणी को विराम देना। जब तक ये वाणी विराम नहीं होगी अंदर कैसे जाएंगे, यहाँ इतने सारे खजाने हैं, ये इतना आसान मार्ग नहीं है कि थोड़ी बहुत मुरली पढ़ ली, सुना ली, सुन ली, लिख ली, पॉइंट नोट कर लिए, भाषण दे दिया और हो गया। ये अनुभूति का विषय है। मन को अनुभव हो कि मैं सही में वास्तव में शांत हो गया, बाहर की कोई हलचल अब मुझे चाहे कितनी भी बड़ी हलचल, कोई नुकसान, कोई विरोध, कोई निंदा, कोई ग्लानी हो, वो हलचल में नहीं आ सकती। ऐसी वास्तव में बाप समान बनना अर्थात मौन मन का मौन, बाप समान बनना अर्थात मौन शांत, बाप समान बनना अर्थात मन की डांस, बाप समान बनना अर्थात मन शक्तिशाली। जानकी से ने कभी किसी को पूछा था कैसे हो, उसने कहा था ठीक है, ठीक हूं। दादी ने कहा ठीक अर्थात बाप समान, बाप समान हो। वास्तव में मन की मौन वही अवस्था है बाप समान। ये सारी अंतिम अवस्था है हमारे कर्मातीत मन के मौन फाइनल स्टेज है। बाबा क्या कर रहे हैं, नए नए शब्दों का प्रयोग करके ज्ञान को रंगीन बना रहे हैं, परंतु है वही अवस्था बाप समान स्थिति अर्थात मन का। और उसने ये सब नहीं किया, पहली बात डायरेक्टर वो है, परंतु उसने कई बार बताया है कि उसने ये ड्रामा नहीं बनाया। बाबा खुद कहता है मैं ड्रामा के पक्ष हूं। अगर वो ये कहे कि मैंने ड्रामा बनाया तो उस पर बहुत सारे आरोप और दोष हो जाएंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इतने विशेषता करी उसने क्यों नहीं करी, यह ऐसा क्यों किया, वो वैसा किया। कर्म प्रधान विश्व करी आता, जो जस करे तो तस पंचा। कर्म प्रधान विश्व को बना के रख दिया। एक अव्यक्त वाणी ने 72 की, जिसमें बाबा ने कहा है ये ऑटोमेटिक मशीनरी है, बाप इसमें कुछ नहीं करता है, जो जिसने पुरुषार्थ किया अपने आप उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा, किसने पाप किया अपने आप फल मिलेगा, जिसने पुण्य किया अपने आप फल मिलेगा। बाबा बोलता है किसका देखते रहेगा और करते बैठेगा। एक पहली बात तो ये कि वो कहता जरूर है कि मैं डायरेक्टर हूं, परंतु उसने ये ड्रामा बनाया, पहली बात। दूसरा, बाबा ने ये भी कहा यह ड्रामा अनादि बना, इसमें जो भी हो रहा है पहले से फिक्स है, मेरा पास दो, ये जो हमने कहा ना कहीं कहीं जीरो का भाव हमको दिखाई देता है। कभी बाबा ने मुर्गियों में कहा है कि भक्तों की पुकार सुनकर मैं आया, तुमने मुझे पुकारा, जन्म जन्म तुमने पुकारा, इसलिए मैं आया हूं, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं आया। कई मुर्गी ने कहता मैं तुम्हारी पुकार सुनकर थोड़ी आया हूं, मेरी ड्यूटी है आना, मेरा तो काम ही है पति को पावन करना, तुम्हारे पुकार सुनकर मैं नहीं आया। विरोधाभास किसी का, परंतु अगर इसको समझा जाए तो वो परमधाम में है और ये सब बना बना है, ये एक शब्द बहुत रास। और इस प्रश्न के और अगर गहराई में जाए तो हम एक शब्द में आते हैं कि इस ड्रामा के कुछ राज राज हैं और यही इस ड्रामा की शोभा। कुछ राज इस ड्रामा के राज ही रहेंगे अंत तक, क्योंकि देखो 5,500 वर्ष में एक रहस्यमय व्यक्तित्व बना हुआ है लास्ट तक, वो है भगवान। ये ही ऐसा व्यक्ति है कि जिसके विषय में हजारों लोगों ने हजारों टीका लिखी थी, हजारों धर्म बने, हरेक ने कहा भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है। वो ही अंधे वाले की कहानी, वो है कैसा किसको ही नहीं पता, वो आ गया और उसने खुद बताया मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये मैं हूं, ये ऐसा हूं, वैसा हूं, वैसा हूं। वो बताने के बाद भी जिन्होंने उन्हें 40 साल से सुना, 50 साल से जो उससे सुन रहे हैं, परंतु एक मूल्य में बाबा ने कहा है अब तक मैंने तुम्हें जो सुनाया है वो केवल एक बूंद है, एक बूंद बस। वो क्या है वो उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। इसलिए इस ड्रामा में बहुत से राज राज हैं, हमें बहुत सारी चीजें दिख रही, यज्ञ में नहीं दिख रही है, हलचल हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, कई सारे छोड़ भी जा रहे हैं, ज्ञान छोड़ भी जा रहे हैं, बहने ज्ञान छोड़ भी जा रही है, जो अनन्य बहने थी वो कहां कहां शंकर पार्टी और कहां कहां चली जा रही है, क्यों भगवान के यज्ञ में भी ऐसा होता है। इसके लिए ड्रामा तो बना बनाया है, हर एक एक्टर का पार्ट फिक्स है, क्योंकि इतना इतना सूक्ष्म है ये, तब हम ये नहीं कह सकते कि उसने पूर्व जन्म में ऐसे क्या कर्म किए और ये बड़ा कर्म है। द्वापर में ऐसे क्या हुआ कि हरेक का अपना अपना पार्ट है। बाबा ने भी उत्तर दिया, हरेक में पार्ट रिकॉर्डेड है और वो अपने आप ले हुए। ये रिकॉर्ड कैसे हुआ, ये ड्रामा कब बना, किसने बनाया, अगर एक एक प्रश्न का भी उत्तर दिया जाए तो एक प्रश्न से 100 नए उत्तर, उस एक उत्तर से 100 नए प्रश्न जन्म लेते। हमने जितनी मुरलियां पढ़ी उसमें अभी तक तो हमें मिला नहीं इसका उत्तर, परंतु हमें एक उत्तर इस तक पहुंच गए हैं कि इस ड्रामा में कुछ राज राज भी है। यही इस ड्रामा की शोभा है। सभी पता चल जाए तो कैसे होगा, सब नहीं पता चले। बाबा ने जैसे कहा ना, दिव्य बुद्धि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ, एक चीज नहीं देता हूँ, साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे पास है, बाकी तुमको जो चाहिए वो लो, स्वर्ग चाहिए स्वर्ग लो, सब लो। और दूसरा, बाबा ने 3 काल्पनिक निराकारी चीजें उत्पन्न की है, 3 जो कोई व्यक्ति नहीं। सबसे पहला ड्रामा, ड्रामा कौन है, ड्रामा क्या है, कुछ है नहीं, निराकार है ड्रामा, कुछ है नहीं, परंतु बार बार ड्रामा 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 करते हो, ड्रामा होता। अरे ड्रामा तो सर क्या होता है, तुम डायरेक्टर हो, फिर ड्रामा को किस बीच में लगा, ड्रामा होता, ड्रामा होता, ड्रामा एक ड्रामा। दूसरा माया, माया कौन है, बाबा कहते मुर्गियों में आते माया, ये कर दी माया, वो कर दिया माया, ऐसी माया बिल्ली माया ये वो, माया कोई है ही नहीं। और तीसरा कुदरत, ये 3 ऐसी चीजें बाबा ने मुर्गियों में लाई है और ये उसके लिए बहुत आवश्यक है। यदि बाबा ड्रामा का राज ना देता तो माता है और मैं वो तो बाबा को उठा भी उठा के लिए चले जाते कि तो पता हो हमारा कुछ ज्ञान में क्यों नहीं, हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों होता वैसा क्यों होता, कुछ भी हुआ बाबा ढाल लेके, ये बाबा अपने लिए उसके लिए ढाल लेके, ये उसकी अपनी देवती है, कुछ भी किसी ने पूछा बाबा सीधा कह देते ड्रामा।
क्रिएटर तो बाबा ही है,
क्रिएटर शब्द जो है उसको समझना होगा, वो क्रिएटर उस धूल दृष्टि से नहीं है, जैसे कोई कुम्हार है वो कोई मटका बना रहा है उस दृष्टि से क्रिएटर नहीं है, उसका क्रिएटर अर्थात होना अर्थात वो स्वर्ग की रचना करने का क्रिएटर है। भक्ति में भगवान के 5 कर्तव्यों का बयान, कौन कौन से, 3 तो हम सुनाते हैं परंतु 3 नहीं, भक्ति में 5 कर्तव्य करता है भगवान, स्थापना पालना विनाश, चौथा परिवर्तन और 5वां मोक्ष, सबको मुक्ति देता है। ये 5 कर्तव्य भगवान की बताए, परंतु वो स्थूल रीति से नहीं करता है, जैसे जगत पहले था नहीं और उसने निर्माण किया ऐसा नहीं है। जगदीश भाई की किताब है वर्ल्ड लिटरेचर ड्रामा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 हिंदी में, पार्ट 3 जो है वो केवल इंग्लिश में, अभी तक किसी ने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है। इतनी बड़ी किताब है, स्पिरिचुअल मिसलेनी उसका नाम है, उसमें जगदीश भाई जी ने लिखा है बहुत सारी चीजें, सागर की आयु कितनी है, वृक्ष की आयु कितनी है, पर्वत की आयु कितनी है, इसके पूरा डिटेल में वर्णन किया है कि लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की कितनी है, कार्बन डेटिंग किया, डायनासोर तुम लोग कहते हो कल को 5,000 साल का है पर डायनासोर की उम्र तो पता चली 2,000,000,000 वर्ष की है, वो कैसे, तो तुम्हारा तो सिद्धांत ही फेल हो रहा है। उसमें उन्होंने बहुत गहराई से बहुत सारी बातें लिखी है कि ये जो कार्बन डेटिंग की मेथड भी है जिससे पता चल रहा है वो कितनी एक्यूरेट है, मनुष्य जो कुछ सिद्धांत बता रहे हैं वो कितने एक्यूरेट है, वो संपूर्ण एक्यूरेट ऐसा नहीं कहा जाए। हम अपने कोर्स में कहते हैं इब्राहिम आया इस्लाम धर्म की स्थापना की, हम कहते हैं क्राइस्ट आया क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, फिर मोहम्मद आया मुस्लिम धर्म की स्थापना की, क्या मुस्लिम और इस्लाम धर्म अलग है, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिस पर अगर कोई ज्ञानी आ जाए जिसने सारा अध्ययन किया है तो हम फंस जाते हैं कहीं। हाँ एक्चुअली मुस्लिम धर्म जो है वो कोई मुस्लिम धर्म नहीं होता है, जो इस्लाम को फॉलो करने वाला है उसे मुस्लिम कहा जाता है एक्चुअली। और वास्तव में अगर देखा जाए तो इब्राहिम तीन धर्मों का पिता है, इब्राहिम के द्वारा तीन धर्मों की शाखाएं निकलती है। इब्राहिम का जीवन यदि जगदीश भाई ने इस पर भी एक क्लास कराई थी जो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, इब्राहिम जो था जो क्रिश्चियन धर्म में दिखाया है, जो आया पहले तो आदम और बीवी और फिर बीच में इब्राहिम है, बीच में नोआ है, नोआ की जहाज जिसमें प्रलय का वर्णन है। इब्राहिम की दो पत्नियां, एक पत्नी का बेटा था इसहाक और दूसरी पत्नी का बेटा था इस्माइल। इस्माइल के वंश से जो नीचे आया वो मोहम्मद, इसहाक के वंश से जो नीचे आया वो क्राइस्ट, और इसी बीच में एक दूसरा व्यक्तित्व आया मोसेस, मूसा। मूसा के द्वारा यहूदी धर्म, इस्माइल के द्वारा मोहम्मद इस्लाम धर्म। वैसे इस्लाम की स्थापना तो तभी हो चुकी थी, इब्राहिम ने कर दी थी। इस्लाम के जो इस्लाम लोग जो हैं मुस्लिम उनको कहो कि क्या मोहम्मद ने स्थापना की, मोहम्मद ने स्थापना नहीं की, वो तो पैगंबर आया है, स्थापना तो पहले से है, खुदा की है। तो ये तीन धर्म है इस्माइल, क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी। इन तीनों का ही पिता, इन तीनों धर्मों का इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। तो कभी कभी हम ये जो बात बताते हैं वो पैगंबर है एक्चुअली मोहम्मद जो बाद में आया क्राइस्ट के पास, और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का कैसे वहाँ डिवीजन है, उन दोनों का क्या अंतर है क्राइस्ट की फिलोसॉफी में और मोहम्मद की फिलोसॉफी में, ये बहुत चिंतनीय बात है। तो एक जो चित्र ज्ञान सरोवर में लगा हुआ है वो एकदम एक्यूरेट लगा है इस जगह, जिसमें इस तरह का बताया नहीं मुस्लिम और इस्लाम। बाकी मुस्लिम की परिभाषा एक है, यह है कि जो इस्लाम को फॉलो करता है वो मुस्लिम, उसे मुस्लिम कहा जाता है। वास्तव में हम सब मुस्लिम हैं, जो जिसने अपना जीवन अर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया है वो मुस्लिम, भगवान के खुदा के आगे ही इज नोन एज मुस्लिम। व्यक्ति कोई धर्म नहीं है मुसलमान, मुस्लिम एक्चुअली। तो हम वो जो बात बताते हैं ना उसमें अगर कोई मुसलमान ही आ जाए तो वो तो बहुत बड़ा ये लेगा, उसे क्रिटिसाइज करेगा। तो ये ज्ञान जैसे कहा बहुत सूक्ष्म है, एक है फॉलो करना, धारणाएं करना, वो दूसरी बात है, उसके लिए ये सब चीजों की ज्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं, वो चिंतन अलग है। पर ये जो फिलोसॉफी है ब्रह्मा कुमारी की फिलोसॉफी व्हाट इज इट, अगर इस पर डिबेट या डिस्कशन होता है तो उसमें गहन चिंतन की आवश्यकता है। धर्म क्या है, सारे धर्मों का स्थापना कैसे कैसे हुई, एक एक धर्म के बाद कब कब कौन कौन सा धर्म आए, ये सब चिंतन की बात है। चलो पर इनका वो धारणा पे इतना संबंध नहीं है, ये ज्ञान की प्योर ज्ञान की बात है। और कोई लास्ट क्वेश्चन समय होना है। एक ही देखो फिर से, अभी बाकी तो कृष्ण जो है वो सतयुग में है, उसका भक्ति में जो गायन है वो सब कुछ भी नहीं, परंतु क्राइस्ट का जीवन और जीसस कृष्ण का जीवन अगर देखो तो लगभग समान कहते समान। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, भक्ति के अनुसार देवकी और वसुदेव दोनों ही कारावास कारागार में, वहां जन्म हुआ। जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ, वो भी छिपे हुए हैं, वो जो वो घोड़ों का तबेला होता है वहां पर हुआ है। यहाँ पर कंस का शासन चालू है, यहाँ राजा हिरोद का शासन चालू है, ये कंस से बचा हुआ है, इसको यहाँ से ट्रांसफर किया गया मथुरा से अपना गोकुल। क्राइस्ट का जैसे ही जन्म होता है जरूसलम में, वहां से उसको ट्रांसफर किया जाता है दूसरी जगह जाता है। जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन है कंस ने सारे बच्चों को मार दिया। जिस दिन क्राइस्ट का जन्म हुआ और वो तीन संदेश वहां का है और उन्होंने कहा कि भगवान का मसीहा आ गया है और ये वो मसीहा है, और ये राजा हिरोद को उन्होंने जाके बताया, परंतु फिर हिरोद ने क्या किया, जितने बच्चे उस दिन जन्म लिए थे सबको मार दिया। दोनों का जीवन शब्द भी क्राइस्ट और कृष्ण मिलते जुलते हैं। वो कहते हैं विवेकानंद ने अपने स्पीच में एक बार कहा है, हो सकता है ये भक्ति की बातें हैं, हो सकता है वो क्राइस्ट, वो कृष्ण ही क्राइस्ट बनकर आया है, परंतु ये अच्छा भक्ति की बातें हैं, तो लोगों ने दोनों को भी समान जोड़ा है। तो ये जो राशि एक है, एक तो शब्दों की व्युत्पत्ति ऐसा शब्द है कि जन्म कैसा हुआ है शब्द का, शब्द दोनों के समान है, जीवन भी थोड़ा थोड़ा समान है, इसलिए बाबा कहते ये राशि एक है दोनों, क्योंकि भक्ति में दोनों का बहुत समान दिखा है। हाँ वो तो देखो, अगर वैसा अगर कहा जाए तो कृष्णा सतयुग में, सतयुग का प्रिंस है, वो कोई धर्म स्थापक नहीं है और वो तो छोटा बच्चा है, ठीक है, ये बाबा की परिभाषा है। उसके जीवन में ऐसी कोई कहानी नहीं, जीवन कहानी कुछ भी नहीं, जो कहानी है वो भक्ति में बनाई गौर, कहानी कुछ भी नहीं है उसकी। अगर ऑटोबायोग्राफी लिखे क्या लिखे, बायोग्राफी कुछ भी लिखा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं है, वो है आया रहा और चला। क्राइस्ट की कहानी, परंतु वो कहानी भी कितनी सही है किसको पता, वो सारे जो वर्णन लिखे हैं वो क्राइस्ट के जाने के बाद लिखा हुआ है बाइबल, पहले थोड़ी लिखा हुआ। 40 लोगों ने मिलकर बाइबल लिखा है, उसमें से 4 मुख्य शिष्य थे, उन्होंने वो बाइबल लिखा है, वो भी ओल्ड न्यू टेस्टामेंट, कितने सालों के बाद, वो कितना सही है। कई लोग तो ये प्रश्न उठाते क्राइस्ट है ही नहीं, वो कहते हैं कि ये जो यहूदी लोग थे उन्होंने काल्पनिक व्यक्तित्व खड़ा कर दिया है और नए धर्म की स्थापना कर दी, यहाँ तक लोग कहते हैं कोई है ही नहीं। कई लोग कहते हैं कृष्ण है ही नहीं, भारतीय संस्कृति में लोकमान्य तिलक की किताब है जिसमें लोकमान्य तिलक करते हैं द मैन कृष्णा एग्जिस्टेड आई डाउट, ऐसा वर्णन है, ये था भी या नहीं था, तो भ्रांतियां तो बहुत है। फिर से कृष्ण का कोई व्यक्तित्व नहीं है, अगर देखा जाए तो कोई कहानी नहीं, कुछ नहीं है, और जीसस क्राइस्ट अगर है भी कोई व्यक्ति तो उसकी कहानियां हैं। कई लोग कहते हैं वो भारत में आया था, भारत के वेद शास्त्र उसने पढ़े, बीच में वो गायब हो गया था, 12 साल का था तब गायब हो गया और 40 साल का था तब वापस आया, बीच में वो कहाँ गया वो किसी को पता नहीं था, नॉन लाइफ ऑफ क्राइस्ट कहाँ था। कई लोग कहते हैं इसने यहाँ आया भारत के वेद शास्त्र पढ़े, तो दोनों ही अगर देखा जाए क्राइस्ट अगर थे वो भी डाउटफुल पर्सनैलिटी, परंतु भगवान कह रहा है, अब ये दूसरी बात है कि भगवान कहता है जीजस है, जीजस के शरीर में क्राइस्ट की आत्मा प्रवेश करती है, ये जीजस कौन है, कौन सा मनुष्य, हाँ वो ब्राह्मण कुल की आत्मा थी, क्योंकि उस समय थे कौन आत्मा है, दूसरे धर्म अभी स्थापन ही नहीं हुए थे, इसी ब्राह्मण कुल की शायद कोई आत्मा होगी, जीजस क्राइस्ट नहीं, उस तन में से क्राइस्ट का प्रवेश था। बाबा का धर्म तब की दो आत्माएं थी, एक तो वो जिस शरीर में है और वो दूसरा, तो ये जो क्राइस्ट है, क्यों बाबा ने कहा दोनों की राशि मिलती है, क्योंकि क्राइस्ट की जो आत्मा है बहुत पवित्र है, सीधा परमधाम से आ रही है, कृष्ण की जो आत्मा है इस सृष्टि की सबसे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सबसे पहले वो नीचे आई थी, इसके लिए इस कारण दोनों की राशि पवित्रता के आधार पर एक है। जब सूली पर किसको चढ़ाया गया, जीजस को चढ़ाया गया, क्राइस्ट को नहीं, क्राइस्ट की आत्मा तो निकलने चली गई। पवित्रता शब्द और शब्दों के उच्चारण में समानता है, क्राइस्ट कृष्ण, इसके लिए राशि थोड़ी बहुत समान है। वो भी थ्योरी है, तो वो भी थ्योरी महात्मा बुद्ध का जो दिखाया है जीवन, उसको वैराग्य आ गया, संन्यास दे दिया, तपस्या की, कुछ नहीं प्राप्त हुआ 6 साल, फिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया, कौन बैठा, गौतम सिद्धार्थ, उस तन में बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया ऊपर, वो भी पवित्र ही थी और वो पहला जन्म जैसे हम कह सकते बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ का नहीं बुद्ध, तो वो दो है। तो जो ऊपर से पहली बार आएगी वो बहुत पावर लेगी, उसमें पावर थी और सबको अपने और खींच लेगी, जैसे बुद्ध का अमर जब हुआ लोग हिंदू धर्म को छोड़ दिया लोगों, तो पावर तो होगी, शून्यवाद की स्थापना करती बुद्ध ने, और जब बुद्ध धर्म बहुत फैल गया चारों ओर, शंकराचार्य की आत्मा का आसन हुआ और शंकराचार्य ने जितने बौद्ध धर्म के थे सबको अपने कर लिया, वापस हिंदू धर्म की स्थापना की, चारों ओर वेदांत फैल गया, ब्रह्म 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 सब शंकराचार्य के, पहले किसके फॉलोअर थे, हिंदू होते, फिर आया बुद्ध, फिर उसके पीछे चले गए, फिर बुद्ध को छोड़ के शंकराचार्य के पीछे शंकराचार्य के कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु बंगाल में सब उसके पीछे चले गए, सबने शंकराचार्य को छोड़ दिया, वो संन्यास मार्ग छोड़ दिया और भक्ति की स्थापना जो हुई है द्वापर से वो सबसे पहले करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु, उसी के बाद फिर मीरा तुलसीदास और ये सारे 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 महाराष्ट्र साउथ के पूरा भक्ति का विस्तार हुआ। ऐसा कहा जाता है कृष्ण का तो मंदिर ही नहीं था द्वापर में कहीं, ये अभी अभी चालू हुआ है, 7th या 8th सेंचुरी के बाद ही कृष्ण के मंदिर बनने चालू हुए सारी कथाएं करके। तो भाव एक ही है, राशि एक अर्थात पवित्रता के आधार से, शब्द के आधार से एक। वो बिजली की कथा जो है उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड कथा है वो कि कई जगह उसके अलग 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 वर्णन है, कोई एक वर्णन कहीं पर भी नहीं है, कोई माता है फिर मतलब वो है कथा क्या उसका कहीं वर्णन नहीं, मतलब ऐसा है कि कोई एक माता है उसके पति को कुछ हो गया फिर उसके पति को लाने के लिए उसने देवी की पूजा चालू की फिर ऐसा किया वैसा किया फिर वो कथा की तो उसका पति आ गया या जिंदा हो गया, कहीं मर गया था कहीं जिंदा हो गया, अलग अलग है। पर वो एग्जैक्ट क्या है इसका हमने बहुत पहले कभी ढूंढा था, कुछ खास उत्तर उसका कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी ऐसी ये कथा है। उसमें आप खाली इतना कुछ कुछ बातें जो है ना बाबा ने ऐसी ली है भक्ति मार्ग की भी कि उस मार्ग में भी वो इतनी क्लियर नहीं, जैसे बाबा ये लेते हैं रूप पसंद की कहानी। अब रूप पसंद की कहानी का एक इंग्लिश में इतनी बड़ी किताब जिसमें इंग्लिश ऑथर ने रूप पसंद की कहानी के कई सारे अर्थ दिए हैं और कई सारी कहानियां दी, अलग अलग कहानी दो ही व्यक्ति हो पर बाबा उनको अलग ही किसी से यूज करते, तुम हो रूप पसंद, बाप है रूप पसंद, रूप अर्थात योग और ज्ञान, इस तरह से बाबा प्रयोग करते। तो और दूसरी एक बात, साकार मुनिया जो चली उसमें बहुत सारे ब्रह्मा बाबा के अनुभव है क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने बहुत ज्यादा भक्ति की थी, बहुत ज्यादा लोगों से मिले थे, तो कुछ कुछ बातें ऐसी है कि थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल जैसी भी लगती है क्योंकि वो शिव बाबा नहीं कह रहा है, वो ब्रह्मा बाबा के अनुभव है बहुत सारे, क्योंकि बाबा को क्या करना है, अरविंद क्या कर रहा था और विवेकानंद क्या कर रहा, ये सब के वर्णन आते हैं मुरलियों में, शिव बाबा ये सब नहीं कहता है, वो ब्रह्मा बाबा अपने कभी यहाँ की रानी ने ऐसा किया, कभी वो कश्मीर के राजा का वर्णन करते हैं, ये क्योंकि बाबा उन जगह गए हैं। तो ऐसे ही ये जो तीसरी कथा है अगर वो आते हैं तो खाली आप उसको कुछ कुछ पॉइंट जो है ना उसको छोड़ के आगे निकल जाए, ज्यादा उसकी गहराई में जाना नहीं, तो वो जैसे भक्ति में कथा करते हैं कोई संकट आता है कुछ आता है तो ये कथा की जाती है, बस वो कथा क्या थी। साकार ब्रह्मा बाबा अव्यक्तवाणी पढ़कर संपूर्ण बने थे, मम्मा अव्यक्तवाणी सुनी नहीं है मम्मा ने, कहा सुनी इतने। देखो हम इस यज्ञ को ऐसी रीति से डिवाइड करते हैं, क्या कहेंगे जिसको पहला ग्रुप यज्ञ का जिसको हम कहेंगे क्या कहते हैं, नहीं वो नहीं, हाँ वो तो है जो नहीं वंशावली नहीं, ये इसको क्या कहा जाता है मोबाइल को 3G, हाँ 1G 2G 3G 4G, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन। पहली जनरेशन यज्ञ की 69 के लिए जब से बाबा आए तब से 69 तक या कहो 50 पहली फर्स्ट जी 1G जो है बाबा आए और 50 तक जब कराची में लग गया, 2G चालू हुआ 51 से नहीं 50 जब माउंट अबू में यज्ञ पहुंचा 5 तारीख 5वां माह 1950 5th May 1950 यज्ञ माउंट अबू में पहुंचा, सारे दादिया वगैरह माउंट अबू में आए, वहां पे फिर नए नए कुमार सबसे पहले जगदीश भाई ये सारे कुमार, तब तक तो वो पुराने जो थे 2-3 दादा वगैरह बस कोई थे, यहाँ पे थोड़ा पार्ट चेंज हुआ, यहाँ तक सेवाएं थी केवल तपस्या थी वो फर्स्ट चीज, 36 से लेकर 50 तक, 50 से चालू हुई सेवा का पाठ, यहाँ बाबा भेजने लगे थे सबको, 50 से लेकर 69 तक, ये वो सारे लोग थे जिन्होंने साकार में बाबा के साथ थे। अब ये सारे जो 69 तक थे, इन्होंने तो, और जिन्होंने शरीर भी छोड़ दिया उसी पीरियड में, उन्होंने तो अवगत तो वाणी सुनी नहीं, फिर कितने दादी उन्होंने तभी शरीर छोड़ दिया, अव्यक्तवाणियां सुनी नहीं, अर्थात साकार मुखिया संपूर्ण ज्ञान है। अव्यक्तवाणी खाली एक्सप्लेनेशन है उसका, जो साकार मुखी में एक शब्द आ जाता है उसका एक्सप्लेनेशन है वो बस, बाकी उसमें संपूर्ण ज्ञान है। 69 से लेके तो फिर हम कहेंगे ये चिंतन खाली है दादी प्रकाश मणि के, या फिर कहो 2000 तक, या दादी दादी यज्ञ में थी और दादी के जाने के बाद का यज्ञ, इसमें थोड़ा अंतर है। दादी यज्ञ में है तब तक का यज्ञ और दादी जाने के बाद का यज्ञ, इस पीरियड में सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ। जो विस्तार दादी ने सेवाओं का दिया शायद कोई कर सकता था, मतलब इतना प्रचंड विस्तार सारे विश्व भर में फैल गया यज्ञ, और दादी जाने के बाद का 3G 4G जो कहो उसको। तो अव्यक्त वाणी और साकार वाणी में अंतर बहुत है, परंतु अव्यक्त वाणी केवल एक क्या कहेंगे एक्सप्लेनेशन है साकार मुखिया का, साकार मुखिया ही इतनी गहन है। हाँ वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें चिंतन और फिलोसफी की बात है, साकार मुखियों में भी उतना है, जब अव्यक्त वाणी पूरी डेप्थ में पढ़ते हैं तब पता चलता है साकार मुखी कितनी इंपॉर्टेंट। अव्यक्त मूल्य में आएगा क्यों, क्योंकि एक टॉपिक से रिलेटेड बात है। साकार मूल्यों में बाप आए हैं पति के पावन बनाने, तुम्हें दिव्य गुण भी धारण करना है, तुम्हें सेवा भी करनी है, तुम्हें तस्वीर में जाना है, इस दुनिया में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, मतलब कोई टॉपिक नहीं है, कहाँ चालू हो रहा है कहाँ बंद हो रहा है, कहाँ नया टॉपिक चालू हो रहा है उसका कोई ये नहीं। जैसे दादी जानकी की क्लास कराती है, अगर किसी को कहो क्लास में क्या था, कहते बहुत बढ़िया क्लास करा दी, अरे पर था क्या, क्योंकि एक टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक है ही नहीं, इतने सारे टॉपिक ताकि कवर कर लिया, साकार मिल देता है। अभी अभी ये बात, अभी भी वो बात, अभी जो उस दिन संदेश सुनाया है यहाँ पर दादी ने, संदेश में कितनी सारी बातें कह दी, परीक्षा की बात कह दी, उसमें हल्का रहना है, ये भी बात कह दी कि तुमको सत्यता और स्नेह तुम्हारे अंदर हो, सहयोग हो, वातावरण ऐसा हो, 3-4-5-6 पॉइंट है उसमें, मतलब वो एक टॉपिक के ऊपर क्या हो सकती है। इसके लिए साकार मुरली में सुन तो लेते पर याद कुछ नहीं, क्योंकि 15 टॉपिक थे 20 टॉपिक थे, और एक ये बात कहाँ एक एंड हो रहा है और कहाँ दूसरा चालू हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। परंतु अव्यक्तवाणी तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम मूल हो, तुम तना हो, तुम कमजोर तो दुनिया कमजोर, फिर उसी का विस्तार है पूरा, तो लिंक लगती है, समझ में आता है कि ऐसा ऐसा है वो, और ये दोनों को कनेक्ट करना तो मजा आता है। दोनों है, व्यक्ति एक ही है, स्पीकर एक ही है, स्पीकर एक ही है, पर उसमें भाषा, उसमें भाषा बाबा ने बदल दी। यहाँ पे सिंपल सिंपल शब्द है, यहाँ फिलोसॉफी, डीप फिलोसॉफी, डीप मतलब इतनी डीप फिलोसॉफी है कि ऑब्जेक्ट मानिया हम जब पढ़ते हैं 60s और 70s और 80s की, हम तो पढ़ ही नहीं सकते, हम इतना, मैं पढ़ता हूँ तो बस इतना ही पैराग्राफ पढ़ सकता हूँ, बस रोक देना पड़ते, हाँ बस इसके आगे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आया आगे कैसे पढ़े। एक अव्यक्त वाणी पूरी पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात, वो तो चली बहुत सारी थी रिकॉर्डेड, और जो है हमारे पास, हमारे ग्रुप में एक भाई है नागेश भाई, उनको हमने एक बार होमवर्क दिया था साकार मूल्यों का इतिहास, जो राजू भाई के साथ है, उन्होंने पूरा वो इतिहास बताया था, जगदीश भाई के लिखे दादी के, वो केवल उनके पास ही है, राजू भाई के पास वो पुरानी पुरानी मूल्यां हाथ से लिखी हुई हिंदी में दादियों की। तो हमारे पास अभी जो चल रही है वो 4-5 साल की, 69 तक 64 या 65 की 5 ईयर के, उससे पहले सब कुछ था, बहुत सारा था, पर बाबा ने कहा सब जला दो, वो उधर कराची में जब निकले वहां से बाबा ने कहा सब जला दो, वो 50 में जला दी। उसके बाद बहुत सारी जो चली दादियों के हैंडराइटिंग में कुछ कुछ लिखी हमने देखी और बहुत सारी मतलब लिखी नहीं गई या है नहीं अभी, और वो भी अभी जो अवेलेबल है ये सारी मंगाई गई अलग अलग सेंटरों से जिसने लिख के रखी थी, फिर उससे ये सारा कंपाइल किया गया। हाँ तो बहन जी के पास भी होंगे। हाँ साकार मुरली में क्यों नहीं, अब यह तो मुरली में रिवाइज क्यों नहीं, साकार मुरलिया जो है वो वैसे की वैसे रिपीट होती रहती है 6-7 साल में, 5 साल में रिपीट होती रहती है, जो बहुत समय से सुन रहे हैं उनको एकदम पकड़ में आता है कि ये मुरली हमने सुनी, परंतु हाँ वो मुझे उतनी ध्यान से सुनी हुई हो या लिखी हुई हो, चर्चा की हो, चिंतन किया हो, नहीं तो सुनाई नहीं आए, बस समझ में नहीं आए। बाकी ये अव्यक्त वाणी में तो रेट लिख दिया, बाकी राजू भाई ने फिर वो जो लिखना चालू किया, दीदी ने जब उनको कहा कि वरदान निकालो, स्लोगन निकालो और धारणा के लिए मुख्य सार निकालो, क्योंकि लोग इतना चार पे पढ़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो सार पढ़ लेते, वरदान पढ़ लेते, स्लोगन पढ़ लेते, प्रश्न उत्तर पढ़ लेते, उसमें सार आ जाता है। ये तो सब बाद में बना, और ये पहले थोड़ी सब कुछ सिंपल चलता था, बस आए और चलो, ना वरदान ना महावाक्य ना प्रश्न ना उत्तर ना धारणा के लिए कुछ नहीं, ये तो सब बाद में इसका रिफाइन किया गया। और पहले की मुरलियां हमने सुनी बहुत खतरनाक होती थी, मतलब इतनी खतरनाक कि उसमें से ऐसे कुछ कुछ शब्द होते थे कि वो निकालने पड़े, निकाल के बाहर करने पड़े वो शब्द, क्योंकि किसके सामने चली थी, उन दादियों के सामने, वो इतनी पक्की दादियां थी सारी, ऐसी वैरागी और सबर भी नहीं थी कि कितना भी उनको कुछ बोलो छोड़ के तो जाने वाले नहीं थी बाबा को। और अभी अगर वैसी वाणियां चले ये क्लास खाली हो जाएगा, तो अभी ये सेंटर का क्लास ही खाली हो जाएगा, उसमें तो ऐसा है तुम मूत्र पीते हो ऐसे ऐसे शब्द है, तुम कुत्ते हो ऐसा भी एक जगह शब्द है, कामी कुत्ता ऐसा शब्द है हमने देखा एक जगह, नहीं ये शब्द ये शब्द मुर्गियों में है, जो कि फिर उसको छाटना पड़ा राजू भाई को। एक जगह आया था विवेकानंद के बारे में कि विवेकानंद मांस खाता हो अपना मच्छी खाता हो, तो एक भाई ने चलो वो खाते थे कभी कभी वो भी है, परंतु राजू भाई से किसी ने कहा कि ये सुनना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो वो पॉइंट को भी उन्होंने निकाल दिया, वो पॉइंट को निकाल दिया। देखो आप जो मुरली सुनाते हो इतनी सारी नए लोग आते हैं, अब इनकी कितनी धारणा है, कितनी पवित्रता है, अंदर घर जाके क्या करते होंगे हमको क्या पता, ये भले यहाँ पे सफेद कपड़े आके पवित्रता जो भी सिखाते हैं, घर में तो विकारों की चक्की में पीसते हैं, सारे विकारी वातावरण में रहते हैं, भले ऊपर में कितना भी दिखाए, अब उनके सामने अगर ऐसी मुरली चले तो छोड़ ही देंगे क्या, तो वो मुरलियाँ चली थी वो तपस्विनी आत्माओं के सामने, रब रब में तपस्या भरी थी, ऐसी पूरा संसार जिनको भूल चुका था, परमात्मा प्रेम में डूबी हुई वो गोपियां थी, उनके सामने कुछ भी कहो और बाबा को उनको वैराग दिया, सबसे मुख्य बात है बाबा भक्ति के विरोध में नहीं है, परंतु बाबा को अगर वैराग दिलाना है भक्ति के तो उसके विरोध में बोलना पड़ेगा। बाबा कभी कभी हमेशा कृष्ण के बारे में कुछ कुछ बोलते थे, पर कभी कभी तारीफ भी तो बहुत करते उसकी, बहुत तारीफ भी तो करते। एक बार तो ऐसा हुआ कि बाबा कह रहे थे गीता में भगवान मैं हूँ, ये कृष्ण का नाम डाल दिया, दादी ने बाबा से पूछा था बाबा आपको फील हुआ था, दादी ने पूछा था बाबा को सीधा पूछ लिया बाबा आपको फील हुआ क्या, हमें जैसे बोलते जाता है मेरे जगह इसका नाम डाल दिया। तो बाबा को मेरा निकाला था इसे छुड़ाना मैं उसे सकती बिल्कुल, तो कड़े शब्दों का प्रयोग करना जरूरी था और किया और उसने छुड़ाया। ओम शांति। वो तो देखो वो अव्यक्त मुरली तो बाबा हमने सुना 16-16 घंटा बैठते थे, अब जितना घंटे बैठेंगे उतनी वो मुरली चलेगी, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं, वो तो 8 या 10 पेज भी चल सकती है, 20 पेज भी चल सकती है, बाबा बैठे और मुरली चल, एक एक ग्रुप मिल रहा है, एक एक ग्रुप जा रहा है, एक एक ग्रुप मिल रहा है, एक एक ग्रुप जा रहा है। कोई एक भाई हमको सुना रहे थे एक बार बाबा सिस्टी हॉल में आए, बाबा बैठे थे माताएं सामने बैठी थी, तो भाइयों को लगा माताएं मिल रही है हम थोड़ा भोजन करके आते हैं, माताओं का मिलना हो गया आपको कितना मिले, वो भी चले गए, बाबा अकेला बैठा है, शिव भगवान अकेला बैठा है, कोई आगे कैसे मिले कोई बात तो करे। और अभी स्टेज पर भी जाने में मुश्किल है, स्टेज पर पहुंचना तो कितनी मुश्किल बात है, कोई पहुंच नहीं पाता है। वो समय था कि भगवान लेट कर रहा है कि ये लोग खाना खाने आए और घर से मिले तो वो भी दिन से है, ये भी दिन है। तो उसका और वो तो कम जाता है, जैसे आज की अवगत वाली जो यहाँ पड़ी गई, ये वाली जो सुबह वो मुरली बहुत बड़ी मुरली है, वो बीच से कट कर, क्योंकि इतना चार पेज में होता नहीं। आज जो मुरली की लास्ट लाइन है, नॉलेज के दर्पण में तस्वीर की तस्वीर देखो, इसके पास आगे शब्द है, वो नॉलेज का दर्पण पता है क्या है, पूरी और बहुत बड़ी मुरली है। पर राजू भाई और ये जो उनका मुरली का टीम है, वो मुरलियों को थोड़ा इस तरह से मॉडिफाई करते हैं और कम ज्यादा करते हैं। कई बार मुरलियों में पार्टियों से मुलाकात वो, हाँ तो कई बार तो ऐसा है कि ये जो मुरली चतुर्थी अव्यक्त वाणी, उसमें एक वाक्य एक पैराग्राफ है, पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर वन, पार्टी नंबर टू, वो पार्टी नंबर टू उस मुरली का है ही नहीं, वो कहीं और से लिया हुआ है, दूसरे मुरली से लिया हुआ है, क्योंकि चार पेज पूरा करना है कई कई यहाँ छोटी मुरली और यही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर पार्टियों से मुलाकात, विदेशियों से मुलाकात, इधर से आस पास की मुरलियों से लिया जाता है और उसको बनाया जाता है। वो ये सारा काम उस डिपार्टमेंट में आने का, छांटना, कम करना, ज्यादा करना, किसको नहीं, कोई कोई वाक्य ऐसा होता है कॉन्ट्रोवर्शियल, उसको वहां से हटा देना, क्योंकि वो अगर डाल दिया तो फोन आने चालू हो जाएंगे उनको, बाबा ने ये क्यों कहा है, सब कहा। एक मुरली में बाबा ने कहा हुआ है वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल, वो शायद बाबा ने कहा है, मुरली में छपा है रामकृष्ण परमहंस की बात है कि वो जब दिखते थे तो नौकर को कहते थे चले जाओ बाहर, उसकी परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। एक बार ये कहा है अरविंद घोष के लिए, एक बार कहा है रामकृष्ण के लिए, रामकृष्ण अंगूठा चाहते उनको लिखना ही नहीं आता। अब मुरली में आ रहा है कि वो जब लिखते थे तो नौकर से कहते थे तुम बाहर चले जाओ, नहीं तो गलत बात होगी। इसके लिए ये तो मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे अभी जो ग्रुप है, टीम बनी है राजीव भाई जी की, वो उसको ये करते, ठीक करते, सेट करते, ताकि ये पढ़ी जाए सेंटर होकर, क्योंकि कहाँ कहाँ जा रही है। और लोग ऐसा ना कि हम तो सब निश्चय बुद्धि हो गए, पर जो नए नए लोग आ गए उल्टी कोई एक आदमी उल्टी सीधी बात सुनती तो खत्म थे, आना ही छोड़ देंगे दूसरे दिन। इसके लिए उनके हिसाब से उसको इस तरह से सजाया गया। हाँ, इसके लिए अभी देखो बहुत सारा मॉडिफिकेशन है, उसमें शब्द बहुत सारे हटा दिए, कहीं कहीं के बीच के लाइन हटा दिए वहां के, वो हाँ मतलब उसमें ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि लोग तो बैठे हुए हैं कि कौन सी गलती दिखे इसमें और हम कुछ करें, उनको तो काम ही नहीं है कुछ, ज्ञान की गहराई थोड़ी समझनी है उनको, उनको तो गलतियां निकालनी है। तो इसलिए ऑप्शन
बुक
कुमार
और